एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई में उतरेंगे जिसके साथ हम रोज जीते हैं, सरकार।
हाँ, सरकार जिसके नियम कायदे सब हम पर लागू होते हैं, पर कभी सोचा है कि ये है क्या चीज, इसका असली मतलब, इसका रोल, इसका मकसद क्या है?
सही कह रहे हैं, और इसी को समझने के लिए आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प किताब है, केनेथ मिनॉक की, गवर्नमेंट अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
अच्छा, केनेथ मिनॉक। तो मिनॉक के नजरिए से देखेंगे कि ये जो सरकार है, या शायद ज्यादा सही कहें तो राज्य, द स्टेट, ये आखिर है क्या?
बिल्कुल। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी जैसे आज दिखती है?
और आज के जमाने में इसका सही लक्ष्य क्या होना चाहिए, यही सब सवाल है।
और देखिए, ये समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये राज्य, ये हमारी जिंदगी के हर कोने को मतलब छूता है। कहाँ जाएं, क्या कहें, क्या कमाएं, क्या सुरक्षित है, सब कुछ।
तो ये हमारी आजादी और सुरक्षा दोनों का जामिन भी है, और कभी कभी शायद खतरा भी।
तो ये जानना कि ये इतनी ताकतवर चीज बनी कैसे, इसकी ताकतें क्या हैं, इसके बताए गए लक्ष्य क्या हैं, और छुपे हुए खतरे क्या हो सकते हैं, ये मेरे ख्याल से एक जागरूक नागरिक के लिए बहुत जरूरी है।
हाँ, ये कोई किताबी बात नहीं है सिर्फ, ये तो हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ी बात है।
तो पहले ये बताएं कि ये केनेथ मिनॉक थे कौन? कोई आम पॉलिटिकल साइंटिस्ट तो नहीं लग रहे?
नहीं, आम नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया के थे राजनीतिक विचारक, पर अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE में पढ़ाते हुए गुजारा।
अच्छा, LSE जाना माना नाम है।
हाँ, और उनकी खासियत थी कि वो विचारों के इतिहासकार थे। मतलब वो ये नहीं देखते थे कि संसद कैसे काम करती है,
अच्छा,
बल्कि ये कि राज्य, कानून, राजनीति, ये आइडियाज आए कहाँ से, इनका मतलब कैसे बदला है वक्त के साथ।
ये दिलचस्प है। उनका अपना नजरिया कैसा था?
उनका नजरिया थोड़ा, आप कह सकते हैं, संशयवादी था, स्केप्टिकल, खासकर जब राज्य की ताकतें बढ़ने की बात आती थी। वो जिसे कहते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म, यानी व्यक्तिगत आजादी और सीमित सरकार, उसके बड़े हिमायती थे।
और उनकी लिखाई कैसी थी? मुश्किल विषयों पर लिखते थे तो?
हाँ, मुश्किल विषयों पर लिखते थे, लेकिन कमाल ये था कि बहुत साफ और दिलचस्प तरीके से समझाते थे।
अच्छा।
वो सरकार को बस एक मशीन नहीं मानते थे, बल्कि एक जीती जागती चीज की तरह देखते थे, जिसकी अपनी उपलब्धियां हैं, जैसे कानून का राज, पर जिसकी भूख भी है जो बढ़ सकती है।
मतलब वो ताकत को सराहते भी थे पर उसके खतरों से आगाह भी करते थे।
बिल्कुल, इसी संतुलन की वजह से उनकी बातें आज भी मतलब सोचने पर मजबूर करती हैं।
तो फिर आते हैं किताब पर। ये किताब आखिर कहती क्या है, इसका मेन पॉइंट क्या है?
देखिए, मिनॉक का सबसे बड़ा और शायद थोड़ा चौंकाने वाला तर्क ये है कि जिसे हम आज बड़ी आसानी से सरकार मान लेते हैं ना,
हाँ,
वो कोई कुदरती चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि हमेशा से थी, ये तो इतिहास में एक खास वक्त पर हुआ एक आविष्कार है, एक इन्वेंशन।
आविष्कार?
सरकार एक आविष्कार है।
हाँ।
और जिसे वो ज्यादा सही शब्द कहते हैं, राज्य,
द स्टेट।
अच्छा, राज्य।
और उनके हिसाब से ये जो आधुनिक राज्य है, जो कि एक अमूर्त इकाई है, इम्पर्सनल, नियमों से बंधी हुई, ये यूरोप में करीब, मान लीजिए, 16वीं सदी के आसपास उभरना शुरू हुआ।
16वीं सदी? तो मतलब बहुत पुराना भी नहीं है ये।
हाँ, ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो ज्यादा पुराना नहीं। ये पुराने जमाने की सल्तनतों से अलग है, ग्रीस के नगर राज्यों से अलग है, रोमन साम्राज्य से भी अलग है।
तो ये राज्य का एक नया रूप था जिसका रोल भी नया था।
बिल्कुल, एक नया ढांचा, एक नया रोल निभाने के लिए। तो किताब का जो सेंट्रल सवाल है वो यही है कि ये राज्य आखिर है क्या, इसका सही लक्ष्य क्या होना चाहिए, और ये हमारी जिंदगियों पर इतना हावी कैसे हो गया। तो मिनॉक हमें एक तरह से टाइम ट्रेवल पे ले जाते हैं, प्राचीन काल से आज तक।
हाँ, एक तरह से वो दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग जमानों में शक्ति, कानून, व्यवस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इनके बीच का रिश्ता बदलता रहा है।
और इस पूरी कहानी में वो एक संघर्ष देखते हैं।
हाँ, एक लगातार चलने वाला संघर्ष। एक तरफ राज्य की ताकत, व्यवस्था बनाने की जरूरत, दूसरी तरफ व्यक्ति की आजादी और उसके अधिकार। और किताब इसी विरोधाभास को बार बार सामने लाती है कि आधुनिक राज्य का घोषित लक्ष्य तो है हमारी आजादी की रक्षा करना।
हाँ, कहते तो यही है।
और उसके पास इतनी ताकत आ गई है कि वो खुद ही उस आजादी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। तो किताब सिर्फ ये नहीं पूछती कि सरकार क्या करती है, बल्कि ये कि सरकार है क्या और उसका सही रोल क्या है।
चलिए तो फिर किताब के अंदर चलते हैं, चैप्टर्स पे थोड़ी बात करते हैं। शुरुआत कैसे होती है?
शुरुआत ही काफी सोचने वाली है। पहला चैप्टर है ग्रीक और रोमन। मिनोक फौरन ये साफ करते हैं कि भाई प्राचीन यूनान और रोम में राज्य का वो कॉन्सेप्ट था ही नहीं जो आज हमारे दिमाग में है।
अच्छा, कैसे?
जैसे ग्रीक पॉलिस यानी शहर राज्य, वहां नागरिक होना ही मतलब राजनीतिक होना था। लोग सीधे पब्लिक मामलों में हिस्सा लेते थे, कोई उनसे अलग ऊपर बैठी हुई सरकार जैसी चीज वो नहीं थी।
सीधा जुड़ाव था।
हाँ, और रोमन साम्राज्य में भी जहां कानून और प्रशासन का ज्यादा बड़ा ढांचा था, वहां भी मामला काफी हद तक व्यक्तिगत रिश्तों पर, वफादारी पर और आखिर में सम्राट की अपनी ताकत पर टिका था।
तो वो आज के इम्पर्सनल राज्य जैसा नहीं था?
नहीं, वो रेस पब्लिका यानी सार्वजनिक मामले की बात करते थे, पर वो आज जैसा राज्य नहीं था जिसका एक इलाके पर हिंसा के इस्तेमाल पर एकाधिकार हो। तो पहला सबक, हमारा राज्य नया है और इसका रोल पहले बहुत अलग था।
ठीक है, फिर अगला अध्याय।
अगला अध्याय राज्य और आत्मा हमें ले जाता है मध्ययुगीन यूरोप में। यहाँ ईसाई धर्म का बड़ा रोल आता है,
धर्म का रोल
हाँ
राजनीति में।
हाँ, क्योंकि यहाँ पहली बार दो तरह की ताकतों के बीच एक खिंचाव पैदा हुआ। एक तरफ चर्च की आध्यात्मिक सत्ता, दूसरी तरफ राजा या शासक की दुनियावी सत्ता।
अच्छा, ये विभाजन।
और इसी से ये विचार पनपा कि राजनीतिक ताकत ही सब कुछ नहीं है, उसके ऊपर भी कोई नैतिक या ईश्वरीय विधान है। और इस टकराव ने अनजाने में ही सही एक ऐसी राजनीतिक सत्ता के लिए जगह बनाई जो पूरी तरह धर्म के कंट्रोल में ना हो। यहीं से शासक की शक्ति पर रोक लगाने और व्यक्ति के विवेक की स्वतंत्रता, इन विचारों की नींव पड़ी।
तो ये भविष्य के लिए जमीन तैयार हो रही थी जहां राज्य का लक्ष्य सिर्फ ताकत नहीं कुछ और भी होगा।
बिल्कुल। फिर आता है अध्याय तीन, स्टेट क्राफ्ट की कला। ये हमें ले जाता है पुनर्जागरण इटली और खासकर मैकियावेली के पास।
ओहो, मैकियावेली, इनका नाम तो सुना है, काफी विवादास्पद माने जाते हैं।
हाँ, माने जाते हैं, लेकिन मिनोक दिखाते हैं कि वो आधुनिक राज्य की सोच के लिए कितने जरूरी थे। उन्होंने एक आइडिया दिया, रीजन ऑफ स्टेट, रीजन डी स्टार्टो।
रीजन ऑफ स्टेट, इसका मतलब क्या है?
इसका सीधा मतलब है कि राज्य के अपने हित होते हैं, अपना लॉजिक होता है, और ये हित किसी व्यक्ति की नैतिकता या धार्मिक उपदेशों से ऊपर है।
अरे?
शासक का पहला काम, उसका पहला लक्ष्य है राज्य को बचाना और मजबूत करना, भले ही इसके लिए उसे ऐसे काम करने पड़े जो आम तौर पे
गलत माने जाते हैं,
जैसे कोई कंपनी मुनाफे के लिए कुछ भी करती है।
हाँ, कुछ वैसा ही।
राज्य का लक्ष्य अपनी शक्ति बनाए रखना और बढ़ाना है। यहीं से राज्य एक अलग अपने हितों वाली इकाई बन जाता है।
लेकिन अगर राज्य इतना ताकतवर हो गया अपने हितों के लिए, तो फिर आम इंसान का क्या, उसे कैसे रोका जाए?
बिल्कुल सही सवाल। और यहीं से कहानी शुरू होती है अध्याय चार की, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। मिनोग इसे आधुनिक पश्चिमी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी मानते हैं।
कानून का शासन, ये तो हम सुनते हैं।
हाँ, यहाँ हमें थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक जैसे विचारक मिलते हैं। हॉब्स ने कहा कि भाई बिना ताकतवर राज्य के तो जिंदगी बहुत बुरी होगी, अराजकता होगी, इसलिए मजबूत शासक जरूरी है।
लेकिन लॉक ने कुछ और कहा था, है ना?
हाँ, लॉक ने कहा कि सरकार का आधार लोगों की सहमति होनी चाहिए और सरकार का मुख्य लक्ष्य या रोल होना चाहिए लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। और कानून के शासन का असली मतलब यही है कि ताकत का इस्तेमाल मनमाने ढंग से न हो, बल्कि पहले से बने हुए, सबको पता, निष्पक्ष कानूनों के हिसाब से हो।
और सबसे जरूरी बात,
सबसे जरूरी कि शासक खुद भी कानून के दायरे में हो, कानून से ऊपर कोई नहीं। यहीं पर फिर मॉन्टेस्क्यू जैसे लोगों ने शक्तियों के बंटवारे की बात की, सेपरेशन ऑफ पावर्स।
हाँ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ताकि कोई एक तानाशाना बन जाए। तो कानून का रोल यहाँ ताकत को कंट्रोल करना था।
सही। इसके बाद अध्याय पांच आता है, राजनीति के बचाव में।
राजनीति के बचाव में, हम तो अक्सर राजनीति को कोसते हैं।
हाँ, हम कोसते हैं, पर मिनोग कहते हैं कि राजनीति कोई गंदी चीज नहीं है, ये एक आजाद समाज की सांस की तरह है।
सांस की तरह, कैसे?
ये वो प्रक्रिया है, वो शोर शराबा है जिसके जरिए अलग अलग सोच और हित वाले लोग आपस में बहस करते हैं, मुकाबला करते हैं और फिर किसी समझौते पर पहुंचते हैं कि उन पर शासन कैसे हो।
अच्छा।
जहां राजनीति नहीं होती, जहां सब चुपचाप हाँ में हाँ मिलाते हैं, मिनोग कहते हैं वहां असल में तानाशाही होती है।
मतलब ये जो बहस है, असहमतियां हैं, यही आजादी का सबूत है।
हाँ, ये टकराव को बातचीत से सुलझाने का एक सभ्य तरीका है। राजनीति का रोल समाज को बिना हिंसा के चलाना है।
ठीक है, अगला अध्याय नौकरशाही पर है। नौकरशाही राज्य का इस्पाती ढांचा।
हाँ, यहाँ जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर का जिक्र आता है। वेबर ने दिखाया कि आधुनिक बड़े राज्य को चलाने के लिए नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी सबसे कुशल तरीका है।
ब्यूरोक्रेसी सरकारी दफ्तरों वाला सिस्टम।
हाँ, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पद होते हैं, हायरार्की, नियम होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं, और सबसे जरूरी, ये इम्पर्सनल होती है, अव्ययक्तिक।
मतलब
फैसले नियमों के हिसाब से होते हैं, किसी की शक्ल देखकर या रिश्तेदारी से नहीं। इससे निष्पक्षता आती है, एक तय प्रक्रिया होती है।
ये तो ठीक लगता है।
हाँ, और आधुनिक राज्य के इतने सारे काम, टैक्स लेना, सड़कें बनाना, अदालतें चलाना, ये बिना ब्यूरोक्रेसी के हो ही नहीं सकते। लेकिन मिनोग हमें वेबर की चेतावनी भी याद दिलाते हैं कि यही नौकरशाही अपने नियमों और फाइलों में इतनी उलझ सकती है कि एक लौह पिंजरा बन जाए, आयरन केज।
लौह पिंजरा।
हाँ, जो इंसानियत को, लचीलेपन को, नई सोच को खत्म कर दे, सब कुछ नियमों में बंध जाए।
समझ गया।
हाँ।
फिर अध्याय 7 आधुनिक राज्य का चरित्र। ये सब को जोड़ता है।
हाँ हाँ, ये सभी धागों को एक साथ लाता है। आधुनिक राज्य की पहचान क्या है? संप्रभुता यानी अपने इलाके में सर्वोच्च अधिकार, हिंसा के इस्तेमाल पर एकाधिकार, सिर्फ राज्य कानूनी तौर पर बल प्रयोग कर सकता है, कानून का शासन और एक बड़ी नौकरशाही।
ठीक है,
लेकिन यहाँ मिनोग एक और बहुत जरूरी बदलाव की तरफ इशारा करते हैं, राज्य के रोल का बदलना।
अच्छा, राज्य का रोल कैसे बदला?
पहले राज्य का रोल या लक्ष्य बहुत सीमित माना जाता था, बस एक नाइट वॉचमैन जैसा।
नाइट वॉचमैन, चौकीदार।
हाँ, जो बस बाहरी हमलों से और अंदर के अपराध से सुरक्षा दे और लोगों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट लागू करवाए, बस।
लेकिन
धीरे धीरे, खासकर 20वीं सदी में, ये एक विशाल कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट बन गया। अब इसका लक्ष्य सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि नागरिकों का कल्याण भी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी भत्ता, पेंशन।
हाँ, आजकल तो सरकारें सब कुछ करती हैं।
बिल्कुल, जीवन के लगभग हर पहलू का प्रबंधन करना, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है राज्य के रोल में।
और इनसे शायद आखिरी अध्याय की बात आती है, स्वतंत्रता का निरंकुशता।
हाँ, द डेस्पोटिज्म ऑफ फ्रीडम, ये शायद मिनोग की सबसे तीखी चेतावनी है और आज के लिए बहुत प्रासंगिक भी।
वो इसमें क्या कहते हैं?
वो फ्रांसीसी विचारक थे, एलेक्सिस डी टॉकविल, उनके विचारों को आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि आज आज़ादी के लिए सबसे बड़ा खतरा किसी पुराने जमाने के जालिम राजा से नहीं है,
तो फिर किससे है?
बल्कि एक नए किस्म की नरम या सौम्य तानाशाही से है, सॉफ्ट डिस्पोटिज्म।
नरम तानाशाही, ये क्या होती है?
ये वो राज्य है जो हमारी भलाई के नाम पर, हमारी सुरक्षा, हमारी सेहत, हमारी बराबरी, हमारे आराम के नाम पर, हमारी जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू को कंट्रोल करने लगता है।
लेकिन ये तो अच्छा लगता है सुनने में, सरकार हमारा ख्याल रख रही है।
हाँ, सुनने में अच्छा लगता है, वो हमें बहुत सारे नियम देता है, सुविधाएं देता है, सुरक्षा देता है, हमारी चिंताएं खुद ले लेता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वो हमसे हमारी जिम्मेदारियां छीन लेता है, जोखिम उठाने की हमारी इच्छा, आज़ादी से सोचने और जीने की हमारी क्षमता, वो धीरे धीरे कम कर देता है।
अरे,
वो हमें हमेशा बच्चों की तरह बना देता है जो पूरी तरह उस पर निर्भर है। राज्य का लक्ष्य यहाँ भलाई दिखता है, पर नतीजा आज़ादी का खत्म होना हो सकता है।
बाप रे, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो अगर हम इस पूरी किताब से कुछ खास बातें निकालें, की थीम्स, तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से पहली तो ये कि राज्य कोई भगवान की देन नहीं, ये इंसानों ने बनाया है, आधुनिक चीज़ है।
हाँ बिल्कुल, ये हमेशा से नहीं था और हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये ज़रूरी नहीं। ये हमें इस पर सवाल उठाने का अधिकार देता है।
दूसरा, शक्ति और कानून के बीच की वो लगातार चलने वाली रस्साकशी, है ना?
हाँ, आधुनिक राज्य की पूरी कहानी ही यही है, कैसे राज्य को ताकत दें पर इतनी भी नहीं कि वो भस्मासुर बन जाए। कानून का शासन बहुत ज़रूरी है पर नाजुक भी। राज्य का रोल कानून के दायरे में रहना, ये याद रखना है।
तीसरा, राजनीति की अहमियत, जिसे हम अक्सर गाली देते हैं।
हाँ, मिनोग उसे तानाशाही का इलाज मानते हैं, जहाँ बहस है, असहमति है, मोलभाव है, वहीं आज़ादी है। भारत में हम रोज पार्टियों की नोकझोंक देखते हैं और खींचते हैं। पर मिनोक शायद कहेंगे कि ये शोर ही इस बात का सबूत है कि यहाँ बोलने की आज़ादी तो है, इसकी गैर मौजूदगी ज्यादा खतरनाक है।
बात तो सही है। चौथा,
आधुनिक शासन का वो इम्पर्सनल होना। इसके फायदे हैं जैसे पक्षपात नहीं होता, नियम सबके लिए एक।
हाँ,
पर यही चीज कभी कभी बहुत रूखी और अमानवीय भी लग सकती है, जैसे सरकारी दफ्तरों का अनुभव, वो लौह पिंजरे वाली बात।
समझ गया। पांचवा, राज्य का दायरा लगातार बढ़ रहा है।
हाँ, हम ही मांग करते हैं सुरक्षा की, बराबरी की, कल्याण की, और राज्य बड़ा होता जाता है, लेकिन मिनोग हमें सावधान करते हैं।
किस बात से?
कि क्या राज्य का ये बढ़ता रोल हमें ज्यादा निर्भर और कम जिम्मेदार बना रहा है? क्या हम सुरक्षा के बदले अपनी आज़ादी का सौदा कर रहे हैं?
ये बड़ा सवाल है। और छठा, जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी लगा,
वो है नरम निरंकुशता का खतरा, सॉफ्ट डेस्पोटिज्म। आज शायद आज़ादी के लिए सबसे बड़ा खतरा किसी डंडे वाले तानाशाह से नहीं, बल्कि एक ऐसे ख्याल रखने वाले राज्य से है जो हमारी भलाई के नाम पर हमारी जिंदगी के हर फैसले में घुसना चाहता है। हमें ये सोचना होगा कि वेलफेयर स्कीम्स, सुरक्षा के उपाय, जो जरूरी भी हैं, कहीं धीरे धीरे हमसे हमारी पहल करने की क्षमता तो नहीं छीन रहे।
अगर राज्य का लक्ष्य सिर्फ हमें सुरक्षित और आरामदायक रखना है, तो क्या हम सचमुच आजाद रह पाएंगे? ये सवाल मिनोग छोड़ जाते हैं।
किताब में कुछ ऐसी लाइनें या विचार भी होंगे जो एकदम याद रह जाते हैं, कुछ कोट्स जैसे।
हाँ, कई हैं। जैसे एक तो यही कि आधुनिक राज्य एक ऐतिहासिक अनोखापन है, इसे बनाना पड़ा, इसका आविष्कार करना पड़ा।
ये याद दिलाता है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है।
बिल्कुल।
या फिर ये कि राजनीति स्वतंत्र लोगों की वो शोरगुल वाली गतिविधि है, इसकी अनुपस्थिति जुल्म की खामोशी है।
ये तो राजनीति को देखने का नजरिया ही बदल देता है,
है ना? और ये चेतावनी भी बहुत पावरफुल है। पश्चिमी सरकार की सबसे बड़ी जीत शक्ति को कानून के शासन की जंजीरों में जकड़ना रही है, लेकिन ये जंजीरें कभी भी पूरी तरह महफूज नहीं होती।
मतलब हमें हमेशा चौकन्ना रहना होगा।
हाँ, और आखिर में वो नरम निरंकुशता वाली चेतावनी, आधुनिक राज्य एक नरम निरंकुशता बनने का खतरा मोल लेता है, जो नागरिकों से बच्चों जैसा बर्ताव करती है और धीरे धीरे स्वतंत्रता की उस भावना को ही कुचल देती है जिसकी रक्षा करना उसका घोषित लक्ष्य था।
ये तो आज के डेटा और सर्विलांस के युग में बहुत बहुत जरूरी बात लगती है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इन सब विचारों का हमारी रोज की जिंदगी में क्या काम, हम इन्हें कैसे इस्तेमाल करें?
देखिए, पहली बात तो ये कि हम अपने आसपास की राजनीति को बेहतर समझ सकते हैं। कोई नया कानून आए, कोई नई स्कीम आए, तो हम सिर्फ सतही तौर पर नहीं, बल्कि ये देख सकते हैं कि शक्ति और कानून का संतुलन कैसे बदल रहा है, स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच क्या ट्रेड ऑफ हो रहा है।
माँ, जैसे कोई नई ऐप आई जिसमें बहुत सारा डेटा मांगा जा रहा है सुरक्षा के नाम पर।
बिल्कुल। तो हम मिनोग के नजरिए से सोच सकते हैं, क्या ये लोगों को मजबूत कर रही है या सरकार पर निर्भर? क्या इससे नौकरशाही का नियंत्रण और बढ़ रहा है? कहीं सुविधा के नाम पर कोई निजी आज़ादी तो कम नहीं हो रही? हम सरकार के घोषित लक्ष्य और उसके असल असर में फर्क कर सकते हैं।
और सरकारी दफ्तरों से डील करते वक्त
हम ब्यूरोक्रेसी को समझ सकते हैं, उसकी निष्पक्षता की जरूरत मान सकते हैं, पर उसकी धीमी रफ्तार, नियमों की जकड़न के प्रति सचेत भी रह सकते हैं और शायद बेहतर सर्विस की मांग कर सकते हैं।
और राजनीतिक विरोध, धरने, प्रदर्शन,
हम शायद उसे सिर्फ हंगामा न समझें, बल्कि एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी माने, वो मिनोग वाली शोरगुल भरी गतिविधि जो तानाशाही की खामोशी से बेहतर है।
और सबसे बढ़कर
शायद एक स्वस्थ संदेहवाद, हेल्दी स्केप्टिसिज्म। सरकार के वादों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, चाहे कोई भी पार्टी हो। हमेशा नागरिक के तौर पर सवाल पूछें, क्या सरकार अपने तय रोल में है? कहीं ताकत एक जगह सिमट तो नहीं रही? क्या सुरक्षा के नाम पर आज़ादी कुर्बान हो रही है?
मेरे लिए तो इस पूरी बातचीत से सबसे बड़ा सबक यही है कि सरकार कितनी विरोधाभासी चीज़ है, ज़रूरी भी है और ख़तरनाक भी हो सकती है। और ये नरम निरंकुशता वाली बात, ये वाकई डराती है, खासकर आज जब टेक्नोलॉजी से राज्य सब कुछ देख सकता है, सब कुछ कंट्रोल कर सकता है हमारी भलाई के नाम पर।
और मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे ये समझना था कि ये राज्य कितना नया है, कितना खास है और कितना बनावटी है। ये कोई हमेशा से चली आ रही सच्चाई नहीं है। ये हमें इसे एक दी हुई चीज मानने के बजाय एक ऐसी इंसानी व्यवस्था के रूप में देखने में मदद करता है जिसकी लगातार निगरानी करनी होगी, जिसे सुधारना होगा। ये किताब हमें हयार जवाब नहीं देती, पर सरकार, शक्ति और स्वतंत्रता के बारे में बेहतर सवाल पूछना सिखाती है और याद दिलाती है कि आज़ादी बस मिलती नहीं है, उसे हर पीढ़ी को अपनी जागरूकता और जिम्मेदारी से कमाना और बचाना पड़ता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।